सम्यक ज्ञान चंद्रिका लब्धि सार लेक्चर नंबर एक। ओम नमः सिद्धेय, ओम नमः सिद्धेय, ओम नमः सिद्धेय, ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सवसाऊणं, सम्यक दर्शन चरण गुण कुकर्म कृपाय, केवल ज्ञान उपाय प्रभु भये भजो शिवराय, जिन वाणी के ज्ञान ते तत्त्व श्रद्धा चरण चंद आह्लाद कर माधव चंद प्रधान, नमो जास उजासते जाने निज गुण था, लब्धि सार को पाय के करी के क्षपणासा, समय सार अधिकार। आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने इस लब्धि सार ग्रंथ की रचना की है और उसी के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका भाषा टीका लब्धि सार की जो ढूंढारी भाषा में की है उसका यह हिंदी अनुवाद हम आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं। ग्रंथ का नाम ही है लब्धि सार, तो लब्धि क्या है, सार क्या है, उसको हम देखेंगे। अभी तो हमने मंगलाचरण जो गाया है उसका अर्थ देख लेते हैं। मंगलाचरण पेज नंबर 9 है। पहले 25 पेजों में तो मैंने कहा कि आप सुधार या जो कुछ अशुद्धियों को शुद्ध किया था उसकी बात लिखी है, उसके बाद जहां मंगलाचरण 9 नंबर पेज पर लिखा है उसको निकालना है। जो पेज नंबर राइट साइड में लिखे उसको देखना, सेंटर में जो पेज नंबर लिखे है वो प्रीफेस यानी प्रस्तावना की बात है, आप उसके आगे चलो 25 पेजेस आगे चलो। हाँ, राइट साइड पेज के ऊपर जो राइट साइड में नंबर है उसको देखना। देखो क्या कहते मंगलाचरण में, मिला सबको, सम्यक दर्शन चरण गुण पाय कुकर्म कृपाय, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्राप्त करके, गुण यानी या पर्याय को भी कहते ना गुण, ये जो उसके स्वभाव पर्याय है उसको पाकर यानी उसको प्रकट करके, कुकर्म कृपाय यानी जब कर्म का क्षय हो जाता है, केवल ज्ञान उपाय प्रभु, और केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ये कौन सा उपाय है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जो उपाय है उसके कारण ही ये जो प्रभु भय भजो शिवराय, यानी इसी उपाय से वो प्रभु हुए हैं, भगवान हो गए हैं, और वो शिवराय यानी शिव यानी मोक्ष, यानी सिद्ध भगवान, शिवराय यानी सिद्ध भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन वाणी के ज्ञान तय हो तत्व श्रद्धा, तत्वों का श्रद्धा समय दर्शन है वो कैसे होगा, तो जिन वाणी के ज्ञान से होगा, जिन वाणी से जानेंगे उस पर हम स्वयं निर्णय करेंगे विचार करेंगे तो वो श्रद्धान हो जाएगा। और वो निर्णय तक पहुंचेंगे तब आत्मा का अनुभव होगा, तब हम कहेंगे वो सम्यक ज्ञान हो गया। चरणधारी, चरणधारी ने चारित्र प्रकट कर इन्हें आत्मा में स्थिर होकर एकाग्र होकर केवल लह केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, पावे पद निर्वाण और सिद्ध अवस्था की भी प्राप्ति होती है। नेमिचंद आह्लाद कर माधव चंद प्रधान, ये नेमिचंद ने तो नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती हुए, उन्होंने तो ये लब्धिसार ग्रंथ लिखा है और उन्हीं के जो शिष्य माधव चंद नाम के थे मुख्य, तो उन दोनों का यहाँ कथन यहाँ आया है ग्रंथ में। नमो जास उज्जासते, उनको हम नमस्कार करते हैं क्योंकि उनके कारण ही हमने अपना स्वरूप जाना है, निज गुण थान जाने हैं। लब्धिसार को पाय कय करी कय क्षपणासार, हो है प्रवचन सार सो समय सार अविकार। यानी लब्धिसार को पाय के ने उसको पढ़कर उसको प्रकट करके, क्योंकि यहाँ लब्धि तो हम कहेंगे मोक्ष की प्राप्ति ही लब्धि है, और वो कैसे प्रकट होता है तो संवर निजरा से होता है। संवर निजरा कैसे होती है तो दर्शन चारित्र से होती है, वो बात आएगी स्वयं पंडित जी कहेंगे। तो ये लब्धि सार को पाए करें, यहाँ लब्धि ने पहले में पहले समय दर्शन प्राप्त करके करी कह क्षपणासार, ये ग्रंथों के नाम को दो अर्थों में लिया है। पर हो है प्रवचन सार सम, प्रवचन का जो सार है, भगवान की वाणी का जो सारभूत ऐसा जो विषय है, समय सार अविकार, यानी उस जिनागम के द्वारा समय सार अपने शुद्धात्मा जो है अविकारी ऐसे शुद्धात्मा प्रकट हो जाता है। अब ये ग्रंथ लिखा, इसके एक नंबर का पेज निकालना, पूरा तो हम सूचनिका नहीं पढ़ेंगे, ये लब्धिसार क्षपणासार संबंधी प्रकरण जहाँ पेज के राइट साइड में नंबरिंग किया है वो नंबर देखना है, जो सेंटर में नंबरिंग है वो प्रस्तावना के है, उसमें प्रकाश की और मेरी बात ये है, ग्रंथ में कहाँ क्या सुधार किया है उसकी बात वहां ली है, वो बात अभी हम नहीं पढ़ रहे। जहां उसका विषय कभी आएगा और उसकी जरूरत पड़ी तो उसको पढ़ेंगे, वैसे तो आप स्वयं उसको जरा देख लेना। यहाँ एक नंबर के पृष्ठ पर स्वयं पंडित टोडामल जी लिखते हैं, जिसका हेडिंग है लब्धिसार क्षपणासार संबंधी प्रकरण। मिला सलाबिन, एक नंबर जहाँ राइट साइड पेज नंबरिंग है वहां एक नंबर देखना, अभी मंगलाचरण देखा उसके आठ पेजेस पहले देखो। ऐसा विचार आया कि लब्धिसार और क्षपणासारक नामक सपनासार नामक शास्त्रों में सम्यक्त और चारित्र का विशेषता युक्त बहुत अच्छा वर्णन है, और उस वर्णन को जानकर मिथ्यात्वादी गुणस्थानों का भी स्वरूप अच्छी तरह से स्पष्ट जाना जाता है। जितना हम विशेषता से डिटेल में जानेंगे उतना ही ये गुणस्थानों का भी स्वरूप स्पष्ट ख्याल में आ जाता है, इसलिए इनका जानना बहुत कार्यकारी जानकर। लोगों को तो लगता है कि करना नहीं, क्यों जानना, बेकार का नहीं, बहुत कार्यकारी है। जो स्वयं उसका अभ्यास करते तो ख्याल में आता है वो कितना कार्यकारी है, और हम जब तक नहीं जानते थे तो हम कितना यानी उसके बारे में कितना अज्ञानी थे, और जानने के बाद जो लाभ होता है वो स्वयं हमें पता चल जाता है जो स्वयं पढ़ेंगे। तो कहते इनका जानना बहुत कार्यकारी जानकर उन ग्रंथों के अनुसार कुछ कथन करना, इसलिए ये क्या कि ऐसा विचार आया, पंडित जी लिखते ना ऐसा विचार आया, पंडित टोडल मजी स्वयं लिख रहे हैं कि उनको ऐसा विचार आया, इसलिए लब्धिसार शास्त्र के गाथा सूत्रों का भाषामय अनुवाद, भाषामय ने ढूंढारी भाषा में अनुवाद इसी टीका में मिलाइएगा, उसी के क्षपक श्रेणी के कथन रूप गाथा सूत्रों के अर्थ में क्षपणासार का अर्थ गर्भित होगा ऐसा जानना। यानी यहाँ दो अलग अलग नाम दिए, लब्धिसार और क्षपणासार, तो लब्धिसार तो उसकी टीका अवेलेबल थी, लब्धिसार क्षपणासार दोनों ही जो मूल प्राकृत जो गाथाएं हैं वो नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के द्वारा रची है, परंतु जहां तक लब्धि सार है वहां तक की तो संस्कृत टीका अवेलेबल थी, शपणासार की नहीं थी, परंतु अन्य किसी आचार्यों के द्वारा वहां जयपुर के भंडार में उनको मिले थे कि संस्कृत में उसकी भी टीका कुछ मिली थी, तो उसके आधार से इन्होंने शपणासार की भी टीका लिखी है। यानी मूल गाथा है तो कंटिन्यूएशन में है, परंतु ये जो टीकाएं जो है अलग अलग, एक तो संस्कृत टीका जो थी उसके आधार से बनाई, और क्षपणासार की किसी मुनियों के ही द्वारा रचित थी उसके उन्होंने आधार लेके उसकी टीका बनाई। यहां कोई कहेगा, ये पंडित जी की विशेषता है क्योंकि ऐसे कहने वाले भी मिलते हैं ना, उन ग्रंथों की जुदी ही टीका क्यों नहीं करते, लब्धिसार को अलग रखते, क्षपणासार को अलग रखते, इसी में कथन करने का क्या प्रयोजन है? उसका समाधान, गोमर सार में कहे हुए कितने ही अर्थों को जाने बिना,
उन ग्रंथों में कहे हुए कितने
ही अर्थों का ज्ञान नहीं होता। यानी ये जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका नामक एक ही टीका में इनको लेने का क्या प्रयोजन था? तो गोमर सार में हमने अभी तक जो हमने अभी अपना जीव कांड हो गया, यहाँ कर्म कांड हुआ, तो वहां हमने कितने ही अर्थों को जान लिया, उसको जानकर अभी इनका जानना भी सुगम होगा। अथवा उन ग्रंथों में कहे हुए अर्थों को जानकर इस शास्त्र में कहे हुए गुणस्थानादि कितने ही अर्थों का स्पष्ट ज्ञान होता है, ऐसा संबंध जाना, ये उसको एक ही पूरी टीका सम्यक ज्ञान चंद्रिका नाम देने का प्रयोजन क्या था? तो उसमें से इसमें कितना ही विषय तो वैसा ही है, उसका अधिक स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। तथा उन ग्रंथों में कहे अर्थ कठिन है, इसलिए जुदा करने पर विशेष प्रवृत्ति नहीं होगी। उसको जुदा ही ग्रंथ लिखते तो डायरेक्ट उसको पढ़ने वालों को ख्याल में नहीं आता, समझ में नहीं आता, इसलिए इसी शास्त्र में उन ग्रंथों का अर्थ लिखने का, यानी उसके अनुसार कुछ कथन करने का विचार किया है। उसमें प्रथमोपशम सम्यक्त्व आदि होने के विधान का धारा प्रवाह रूप वर्णन है, उसकी सूचनिका लिखने से विस्तार होगा, कथन आगे होगा ही, इसलिए यहाँ अधिकार मात्र उसकी सूचनिका लिखते हैं। अब हम यहाँ इसको पढ़ने नहीं जाने वाले, क्योंकि प्रत्येक अधिकार में क्या विषय आया है उसको यहाँ उसकी सूचनिका है, उसकी सूची बनाएंगे अभी, उसको यहाँ बिल्कुल उसके नाम लेंगे कि ये इसका वर्णन है, उसका वर्णन है, उसका वर्णन है, कहेंगे स्थिति बंधापसरण है, प्रकृति बंधापसरण है, हम कुछ नहीं समझेंगे। तो अभी तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, केवल उन्होंने ग्रंथ क्यों लिखा उसके इंट्रोडक्शन हमें देखनी थी, उसको तो पढ़ लिया हमने। अब हम आते अपने लब्धिसार भूमिका के पृष्ठ पर, जो अभी हमने मंगलाचरण देखा था 9 नंबर पर, वहीं पर लब्धिसार की भूमिका स्वयं पंडित चोडमल जी लिखते हैं, वहां से हम प्रारंभ करेंगे। जैसे जो ढूंढारी भाषा में ग्रंथ है उसमें यहां पर भी सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका ली है, जो पीठिका जीवकांड के शुरू में भी दी है, कर्मकांड के भी शुरुआत में दी है और लब्धिसार के शुरुआत में भी दी है। तो दो ग्रंथों में हमने विस्तार से उसको, यानी जितना है उतना सब वहां दिया ही था और उसका हमने भी बहुत उसको विस्तार से देखा था। आपको शायद याद होगा कि कर्णानुयोग पढ़ना क्यों, फिर द्रव्यानुयोग के पक्षपाती क्या कहते हैं, चरणानुयोग के पक्षपाती क्या कहते हैं, वो अर्थ के प्रयोजन वाले पैसा कमाने वाले वो क्या कहते हैं, साहित्य आदि पढ़ने वाले क्या कहते हैं, ये अलग अलग लोगों के मत लेकर इसको पढ़ना कितना आवश्यक है वो बात वहां बताई थी। अब हम डायरेक्ट लब्धिसार की भूमिका को देखेंगे। इस तरह मंगलाचरण करके, कोई भी ग्रंथ की शुरुआत मंगलाचरण से होती है, यहां पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हैं, हमें पता है अमृतचंद्राचार्य तो ज्ञान को वहां, या केवल ज्ञान को या ज्ञान स्वरूप आत्मा को नमस्कार करके वहां शुरुआत करते हैं। तो कहते हैं मंगलाचरण करके लब्धिसार के सूत्रों का भाषा रूप व्याख्यान करते हैं। ये जो लब्धिसार गोमरसार जो ग्रंथ भी है ना, तो जय धौला के आधार से वो बना है। बहुत विस्तार से वहां वर्णन है और उसको इन्होंने संक्षेप रूप से और बिल्कुल सरल करके लिखा। अपने यहां जय धौला के हुए थे 16 भागों का पूरा विस्तार से चर्चा यहां हुई थी, स्वाध्याय हुआ था। कभी कभी कुछ पॉइंट पर हम अड़ जाते थे या वहां क्या है कोई पीछे का आगे का ऐसा कुछ वर्णन चलता है तो लब्धिसार को निकाल निकाल कर हम पढ़ते थे, इतना इसमें सरल है। तो यहां तो सूत्रों का भाषा रूप व्याख्यान करते हैं, उसका प्रयोजन क्या है वह कहते हैं। श्रीमद् गोमटसार शास्त्र में जीव कांड और कर्मकांड अधिकारों द्वारा, यह अधिकार कहा है परंतु हमने देखा है तो 1100 पेजेस की दो पुस्तकें हुई है। जीव और कर्म का स्वरूप प्रकट किया। जीव कांड में तो जीव की ही प्ररूपना है सब, जीव की जो 20 प्ररूपनाएं बताई थी जीव कांड में उसको तो कर्णानुयोग भी नहीं कहा, वो द्रव्यानुयोग यानी जीव का ही वर्णन है, वो जीव के ही गर्भित है। और कर्मकांड में तो कर्मों की विस्तार से चर्चा की थी अपने, उसको यथार्थ जानकर मोक्ष मार्ग में प्रवर्तना, ये उसको भी क्यों जानना जरूरी था कि मोक्ष मार्ग में प्रवर्तने के लिए भेद विज्ञान सरल हो इसलिए। तो कहते मोक्ष मार्ग में प्रवर्तना क्योंकि आत्मा का हित मोक्ष है, उसी के लिए विवेकी जीवों का उपाय है। विवेकी कहा, जिसको अपने हित हित का अहित का सीधा सरल विचार नहीं आता, विवेक नहीं है, वो ख्याल में नहीं आती बातें, तो हित किस में समझते हैं, अलग अलग समझते हैं। कोई पैसे में हित समझता है तो उसके पीछे चला जाता है। तो आत्मा का हित तो मोक्ष है और उसी के लिए विवेकी जीवों का उपाय है, और हमें भी उसी का उपाय करना चाहिए, और उसी लिए यहाँ हमने जीव कांड और कर्म कांड के अधिकारों को विस्तार से जाना है। मोक्ष मार्ग, अभी मोक्ष मार्ग क्या है कि जो प्रकट करना है, सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र है, सम्यक ज्ञान भी मोक्ष मार्ग है। वह सम्यक दर्शन का सहकारी ही जानना, यह सम्यक दर्शन की मुख्यता से बात की। तीनों ही शुरुआत एक साथ ही एक समय में ही हो जाते हैं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो कहते सम्यक दर्शन तीन प्रकार का है, औपशमिक क्षौपशमिक और क्षायिक। विरल भाई कौन से तीन प्रकार बताए? हाँ, ये सम्यक के तीन प्रकार बताए आपने। सम्यक चारित्र दो प्रकार का है, देश चारित्र और सकल चारित्र। आप कहेंगे क्या सम्यक चारित्र चौथे गुणस्थान वाले को नहीं है? तो उसकी बात नहीं है, यहां संयम की मुख्यता से बात है। एक देश संयम है और सकल संयम है, इसलिए उसको देश चारित्र और सकल चारित्र ऐसा नाम है, क्योंकि चौथे वाले तो अविरत कहते हैं, विरत नहीं है। तो देश विरत वो पांचवा है और सकल विरत यानी सकल व्रति वो छठे के ऊपर है, संयमी कहेंगे। वहां देश चारित्र तो क्षायोपशमिक ही है और सकल चारित्र तीन प्रकार का है, क्षौपशमिक औपशमिक और क्षायिक। देखो क्या बात करते हैं, क्या पांचवें गुणस्थान में औपशमिक सम्यक तो नहीं है? हाँ, यहाँ चारित्र की बात, ख्याल में आई बात। पांचवें गुणस्थान को गुणस्थान में क्या है वो नहीं पूछे, यहाँ तो देश चारित्र जो है वो कौन सा भाव है? शौशमिक भाव। और छठे सातवें में वो तो रेगुलर छठा सातवां है तो शौशमिक है। और सकल चारित्र जो है, सकल चारित्र छठे से शुरुआत होता है, ऊपर सारे सकल चारित्र वाले, तो श्रेणी में या तो औपशमिक चारित्र है या क्षायिक चारित्र, इसलिए तीनों प्रकार के बताए। ऐसे सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की लब्धि होने पर, लब्धि होने पर यानी प्राप्ति होने पर, उपलब्धि किसको कहते हैं हम, लाभ को हम कहते हैं। क्या उपलब्धि हुई, हम शिविर में गए वहां क्या उपलब्धि हुई, या हमने एक साल भर मेहनत की, धंधा किया, व्यवसाय किया, तो उपलब्धि क्या हुई, तो हमने हम देखते हैं लेखा जोखा देखते हैं ना, कितना कमाया, कितना गमाया, क्या है, तो कहते ये लब्धि है, उपलब्धि क्या हुई, लाभ क्या हुआ, तो कहते हैं सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र की लब्धि होने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति करके सयोगी अयोगी जिन होकर सिद्ध पद को प्राप्त होता है। क्या लब्धि हुई, सम्यक यह दर्शन और चारित्र की बात है, क्योंकि उसके साथ वो तो ज्ञान तो है ही, वहां तो सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की लब्धि होने पर, और फिर वो चारित्र में स्थिरता बढ़ेगी, वो तो ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में जाए तो कहते केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, फिर सयोग गुणस्थान होगा, आयोग होगा, और फिर सिद्ध दिशा प्रकट। इन सबका स्वरूप अच्छी तरह इन्हें स्पष्ट जानना चाहिए, क्योंकि ये ही आत्मा के प्रयोजनभूत कार्य है। जो प्रकट करके जीव सिद्ध होगा तो यही करने योग्य है, प्रयोजनभूत है, तो इनको अच्छी तरह से जानना बहुत आवश्यक है। इनके होने पर पूर्व में हुए कर्म के बंध उदय सत्व की कैसी कैसी अवस्था होती है और जीव का परिणमन कैसे कैसे होता है इत्यादि विशेष जानने योग्य है। विशेष यानी इत्यादि डिटेल्स विस्तार जानने योग्य है, क्योंकि हम तो क्या सोचते हैं, अरे अरे क्या हमने तो अभी तक आत्मा को अपने को नहीं जाना है, बहुत पाप किए हैं, कैसे कैसे कर्म हो गए, अब हमारा क्या होगा, तो कहते इनके होने पर, इनके यानी किनके, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के होने पर पूर्व में हुए कर्म के बंध, पहले जो कोई बंध है कर्म, और जो बंध है वो उदय में भी आएंगे और सत्ता में भी पड़े रहेंगे, तो वो किस तरह से, अभी नए बंध क्या होगा, पुराने बंधे हुए का क्या होगा, उदय में आएंगे तो किस प्रकार आएंगे और सत्ता में पड़े तो उनका क्या होगा, क्या है वैसे आते रहेगा, तो कहते उनके जो विशेष है, उनके जो डिटेल्स है वो अवश्य जानना चाहिए, जानने योग्य है। इनको जानने पर 14 गुणस्थानों का भी स्वरूप विशेष पने से स्पष्ट जानते हैं। हमने तो अभी तो गुणस्थानों के नाम रटे थे, उसकी भी और भी कुछ विशेषताएं जानी थी, परंतु जब इनका स्वरूप यहाँ जानेंगे विस्तार से तो बिल्कुल पूरा मोक्ष मार्ग इतना क्लियर होगा अपने, क्योंकि ज्ञान की जो क्लैरिटी है, स्पष्टता, उसी से विशुद्धि बढ़कर उसी से तो सम्यक दर्शन होगा। जब तक कुछ तो कुछ कन्फ्यूजन चल रहा है इसके बारे में, एक तो इसके बारे में कुछ नहीं जानते तो बिल्कुल अज्ञान है, और कुछ कुछ सुन के रखा है, शब्द सुने हैं और उसका अर्थ भाषित नहीं होता, तो उसको कहेंगे वो निशंक नहीं है प्रतीति उसकी, और उसके हुए बिना तो सम्यक दर्शन होगा नहीं। तो कहते 14 गुणस्थानों का भी स्वरूप विशेष पने से स्पष्ट जानते हैं, और जीव कर्मादि की सर्व चर्चाओं में गुणस्थानों की चर्चा प्रधान है। कोई भी विषय हो तो गुणस्थानों में समझाया जाता है, गुणस्थानों का नाम तो हर जगह आता ही रहता है, ये गुणस्थान है, वो गुणस्थान है, यहाँ से वो गिरा, वहां से वो चढ़ा, इसलिए यहाँ उन औषमिक सम्यक आदि का वर्णन अवश्य करना। यानी औषमिक सम्यक तो होता है तो क्या होता है जीव को, सम्यक तो चारित्र क्षायिक सम्यक तो होता है तो क्या क्या होता है जीव में, क्या होता है कर्मों की, क्या अवस्थाएं होती है, ऐसा प्रयोजन सोचकर उद्यम किया। कौन सा, वो संस्कृत टीकाएं थी, संस्कृत भाषा कर्नाटकी लिपि, तो कहते उसका अर्थ सरल करके भाषा टीका लिखी, उद्यम किया, वे तो स्वयं जानते थे ना, तो स्वयं जानकर रहना था अपने में, तो कहते उनकी तो यही भावना थी कि सामान्य जन भी इसको समझे, उनके एक एक शब्द में वो भाव प्रकट हो जाता। तब हमने यंत्रादि रचना सहित, यंत्रादि ने वो कोष्ठक आदि बनाए हैं, लब्धि सार नामक शास्त्र की मूल गाथाओं का एक पुस्तक देखा, जिसमें कोई टेबल्स वगैरह बने थे, ऐसे ही पुस्तक उनके देखने में आया। वहां उन औपशमिक सम्यक्वादि का विशेष वर्णन जानकर उन गाथाओं का भाषा रूप व्याख्यान करने का विचार हुआ। पुनश्च लब्धिसार की टीका के पुस्तक देखे, वहां औपशमिक चारित्र के वर्णन तक की गाथाओं ही की संस्कृत टीका करके समाप्त किया हुआ है। अवशेष यानी औपशमिक चारित्र ने उपशम श्रेणी का ही वर्णन किया है और वहीं पर वो पुस्तक समाप्त हुआ, टीका वहीं तक अवेलेबल थी। अवशेष क्षायिक चारित्रादि के वर्णन रूप गाथाओं की संस्कृत टीका नहीं है, जिसको हम कहते हैं क्षपक श्रेणी, क्षपणासार का जो विषय है उसकी संस्कृत टीका अवेलेबल नहीं थी उनके सामने। पुनश्च क्षपणासार नामक जुदा ग्रंथ शास्त्र, उसके पुस्तक देखे, वहां गाथाएं तो नहीं है और संस्कृत धारा रूप ही क्षायिक चारित्रादि का वर्णन है। गाथाएं नहीं लिखी है परंतु क्षपणा कैसी होती वगैरह वगैरह विस्तार से चर्चा है। वहां इसके अर्थ का और उन अवशेष लब्धिसार की गाथाओं के अर्थ का प्रयोजन समान सा देखा। ये जो उन्होंने क्षपणासार नाम का जुदा ग्रंथ देखा, उसमें तो केवल वर्णन ही वर्णन था, गाथाएं नहीं थी। और लब्धिसार जो मूल ग्रंथ, जिसमें तो उपशम श्रेणी का भी और क्षपक श्रेणी का भी वर्णन है, वहां तो गाथा ही थी परंतु टीका नहीं थी। तो इन गाथाओं का और वो जो संस्कृत केवल गद्य रूप जो रचना थी उसका अर्थ गाथाओं से उसका मिलान करके देखा, तो वही विषय वहां पर भी था। इसलिए क्या कहते हैं, इस तरह देखकर यह विचार किया कि औपशमिक चारित्र तक की गाथाओं का व्याख्यान तो संस्कृत टीका के अनुसार करना, जैसे अब तक करते आए थे तो संस्कृत टीका थी उसके अनुसार कर दिए, और अवशेष गाथाओं का व्याख्यान यानी एक ही मूल ग्रंथ लब्धिसार नाम का, जिसमें उपशम चारित्र तक का वर्णन, उसको यहाँ लब्धिसार नाम दिया, और आगे का लब्धिसार ही का जो रिमेनिंग पार्ट अवशेष, जिसमें क्षपणा का वर्णन किया है, जो अन्य ग्रंथ के आधार से वहां उन्होंने उसकी टीका लिखी है, उसको क्षपणासार नाम दिया। और अवशेष गाथाओं का व्याख्यान क्षपणासार के अनुसार करना। सो इस प्रकार लब्धिसार की गाथाओं का संक्षिप्त अर्थ यहां लिखते हैं। विस्तार के भय से विशेष नहीं लिखते हैं, तथा कोई कठिन अर्थ मेरी समझ में ठीक न आने के कारण यहां नहीं लिखा है, वह संस्कृत टीका से और क्षपणासार से जानी है। पुनश्च ऐसा व्याख्यान करते हुए कहीं चूक होगी, बुद्धि की मंदता से अन्यथा लिखा होगा, वहां विशेष ज्ञानी इसे शोध कर शुद्ध करे, क्योंकि अर्थ तो गंभीर है और मेरी बुद्धि तुच्छ है, इसलिए कहीं चूक भी हो सकती है। ऐसा विचार कर इस भाषा करने का प्रारंभ करते हैं। वहां प्रथम कितने ही अर्थ और संज्ञा विशेष दिखाते, यानी इसमें आने वाले कुछ ऐसे जिसको कहेंगे ना टर्मिनोलॉजी, शब्द ऐसे आएंगे तो उसका अर्थ हमें भाषित हो तो वहां क्या कहना चाहते वो बात ख्याल में आएगी। जो कुछ अलग अलग जो कुछ है वो भी अभी बताएंगे। इसको जानकर आगे इनका वर्णन जहां आएगा वहां इनको याद करके सही अर्थ का ज्ञानी हो। इस पुस्तक में आगे ये शब्द आने वाले हैं, यहां उसका खोलकर अर्थ बताते हैं, क्योंकि वहां तो वो विषय आगे चले, केवल एक शब्द बताएंगे और फिर आगे चलेंगे, और यहां तो उसको खोल करके अलग से बताया। देखिए जो लब्धिसार ग्रंथ जो है ये समय ज्ञान चंद्रिका लब्धिसार क्षपणासार, हमने भी कब पढ़ा था इसको, 94 में पढ़ा था शायद, हम बस पढ़ते गए थे, कुछ नहीं समझा था, क्या पढ़ रहे हैं, एक एक लाइन का भी अर्थ नहीं भाषित होता, क्योंकि कोई समझाने वाला था नहीं, कुछ विषय पूरा का पूरा नया, यहाँ पढ़ो और फिर चलो आगे, पढ़ो और चलो आगे, हाँ ढूंढारी भाषा। और पूछे तो किसको पूछे, पढ़ते गए थे इतना कि बस पढ़ना है अपने को, समझे नहीं समझे चलो आगे पढ़ना है। इस शास्त्र में 10 कर्णों का विशेष प्रयोजन है, इसलिए प्रथम इनका स्वरूप कहते हैं। 10 करण, करण ने कर्मों की अवस्थाएं हैं, उसको यहाँ करण कहा। कर्मों की 10 अवस्थाएं हैं, अभी हम सब इन सब से परिचित हैं। गुणस्थान का जो अपने यहाँ अभ्यास हुआ है उसमें भी इसको देखा है, कर्मकांड में भी इसमें हमने देखा था। कहते बंद, सत्व, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशम, निगति और निकाचना, ये 10 करण है, यानी ये 10 कर्मों की अवस्थाएं हैं। कौन कहना चाहते 10 को, आप बताएंगे? हाँ बोलो।
बंद, सत्व, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशम, निगति
और निकाचना।
निकाचना,
तो ये जो 10 बताए हैं, वीरेश भाई आप बताएंगे? बोलो बोलो।
हाँ
देखो जोड़ी जोड़ी लगाने ना, उत्कर्षण अपकर्षण,
उत्कर्षण अपकर्षण,
दिव्या बहन बताना चाहते
हैं। बंद, सत्ता, उदय, उदीर्णा, जो पहले चार हो गए,
उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण उपशम। हाँ बोलो बोलो। हाँ बहुत अच्छा। इनका स्वरूप गोमर सार के कर्मकांड में 10 करण चूलिका नामक अधिकार में कहा है वह जानना। हमारे पास जो 2 वॉल्यूम है ना, पहले वॉल्यूम के अंत में है ये विषय 10 करण चूलिका। यहाँ भी प्रयोजन जानकर कुछ लिखते हैं, उनको पता है वो जाके कोई खोलकर फिर दोबारा पढ़ने वाला नहीं। कर्मरूप नवीन पुद्गलों का आत्मा से संबंध होना उसका नाम बंध है। जो नए बनते हैं, पुराने तो पड़े ही है ना, उसको बंध नहीं कहा, उसको तो सत्व कहेंगे। नए जो पुद्गल आकर जुड़ जाते हैं उसका नाम है बंध। वह 4 प्रकार का है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। ये तो विषय हमारा बहुत परिचय का है, बहुत बार ये बातें हुई। कौन से 4 है? हाँ अनुभाग। अभी उसके फिर स्वयं बताएंगे उसका स्वरूप क्या है। वहाँ कर्म रूप होने योग्य जो कारमान वर्गणा रूप पुद्गल, देखो क्या कहना चाहते हैं। आत्मा का प्रदेश जहाँ स्थित है, जिस आकाश के क्षेत्र में, उसी आकाश के क्षेत्र में अन्य द्रव्य है ना, कौन कौन से है भाई? 6 द्रव्य। तो उसमें से जो पुद्गल द्रव्य है, उसमें की भी बहुत सारी अन्य अन्य वर्गणा है, उसमें से जो कारमान वर्गणा है, तो कारमान वर्गणा ही कर्मरूप हो सकती है। तो जहां आत्मा के प्रदेश है, उन्हीं आकाश के प्रदेशों में कारमान वर्गणा पढ़ी अनंतानंत। तो जीव राग द्वेष करता है तो सारी की सारी टर्न होती है कि कर्मरूप? नहीं, कर्मरूप होने योग्य वो भी अपने उपादान से होगी कि नहीं होगी? वहां बहुत पड़ी है अनंतानंत, सबके सब तो कर्मरूप नहीं हो रही है। तो कर्मरूप होने योग्य जो है, यहाँ लिखा ना, कर्मरूप होने योग्य जो कारमान वर्गणा रूप पुद्गल, उनका ज्ञानावरणादि मूल प्रकृति और उनकी उत्तर प्रकृति रूप परिणमना वह प्रकृति बन गए। यानी कारमान रूप, कारमान जो वर्गणाएं हैं वो कर्मरूप परिणमित होती है। कुछ कारमान वर्गणा है वो ज्ञानावरण रूप परिणमित होती है, कुछ दर्शनावरण होती है, कुछ मोहनीय रूप होती है। 8 मूल प्रकृति रूप होती है, और जो मूल प्रकृतियों में जितनी कारमान वर्गणा हुई उसमें भी उत्तर प्रकृतियों में उनका परिणमन होता रहता है। बनते समय ये सब कुछ निश्चित हुआ, तो प्रत्येक एक ही परिणाम और मूल प्रकृति तो आठ बंदे, उत्तर प्रकृति हम देखेंगे अलग अलग इतने बंदे, और उत्तर उत्तर प्रकृति की बात करेंगे तो और उसके कितने असंख्यात भेद होते हैं। तो जो जिस पुद्गल यानी जिस प्रकृति रूप परिणाम, उसकी प्रकृति उसके अपना स्वभाव है, उसके अनुसार उस कर्म में वो परिणमित हो जाता है, उसको कहेंगे प्रकृति बंध। जहां जितनी प्रकृतियों का बंध पाया जाता है वहां उतना प्रकृति बंध जानना। क्या कहते हैं? जहां जितनी प्रकृतियों का बंध होता है, अब हम उसमें नाना जीवों की अपेक्षा भी देखते हैं, हमने देख लिया पहले बहुत बार, और एक जीव की अपेक्षा भी हो सकता है तो देखेंगे हम। तो पहले गुणस्थानों में कितने प्रकृतियों का बंध हो सकता है अरविंद भाई? हाँ, 100 बोलो, 120 का हिसाब लगाएंगे क्या, 148 का? पहले ये बताओ। हाँ अच्छा, 120 का करेंगे, चलो बोलो 120 के 20 बंधेगी कि नहीं बंधेगी? क्या पहले गुणस्थान में ऐसी कोई प्रकृति है कि नहीं बनते पहले गुणस्थान? हाँ, आरक और तीर्थंकर तीन नहीं बंधेगी, तो 117 बन सकती है। एट ए टाइम एक जीव को 117 तो नहीं बंधेगी, ध्यान में? तो आयु में तो एक बनती है, गति में कोई एक बंधेगी, तो एट ए टाइम तो कोई, अभी वो विषय अपना नहीं, वो हो चुका है, हमने बहुत बार देखा भी है, जो हमने बंध के स्थान देखे थे, ज्ञानावरण पांचों ही बंधेगी, पहला गुणस्थान है तो दर्शनावरण 9 के 9 बंधेगी, अंतराय 5 के 5 बंधेगी, फिर मिथ्यात्व में या तो 10 बंधेगी या 9 बंधेगी, फिर 8 बंधेगी या 7 बंधेगी, वो हमने देखे थे विस्तार से। नाम कर्म के भी जो कोई गति बनती है उस गति के साथ वाला कौन सा बंध हो रहा है, एक इंद्रिय पर्याप्त का 23 वाला करेगा या 25 वाला करेगा या 26 वाला करेगा या 28 वाला देवनारकी का करेगा, तो ये अलग अलग जो है, एक जीव की अपेक्षा बात अलग है और नाना जीवों की अपेक्षा बात। तो जितनी प्रकृतियां वहां बनती उसको कहेंगे प्रकृति बंध। हरेक गुणस्थान के कितने कहां प्रकृतियों का बंध होता है, कहां कितने की विच्छित्ति होती है, ये सब हम अभी पढ़ के आए हैं। तो जहां जितनी प्रकृतियों का बंध पाया जाता है वहां उतना प्रकृति बंध जानना। उन प्रकृति रूप जितने पुद्गल परमाणु परिणमित हुए उनका प्रमाण वह प्रदेश बंध है। ये तो किस प्रकृति रूप परिणमित हुए वो तो देखा, परंतु एट ए टाइम कितने परमाणु बनते हैं, ये जो प्रकृति रूप बंध हुआ या कर्म रूप जो परिणमित हुए हैं, कारमाण वर्गणा भी तो अनंत पुद्गलों का वो समूह है, तो उसमें टोटल परमाणु कितने बंधे, तो कहते उसको कहेंगे प्रदेश बंध। क्योंकि यहां प्रदेश नाम पुद्गल परमाणु का है, पुद्गल परमाणु के लिए प्रदेश शब्द आया। प्रदेश बंध का अर्थ आत्मा के प्रदेशों के साथ बनता है ऐसा नहीं लेना। प्रदेश बंध का अर्थ आत्म प्रदेशों के साथ कर्म बनता है इसलिए उसको प्रदेश बंध कहा ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा कथन किसी ने किया था अमेरिका में, और कोई हम वहां पूछ रहे थे हम? अब वो कितने होते हैं परमाणु, तो कहते हैं अभव्य राशि से अनंत गुणा। ये अभव्य राशि कितनी होती है वीरेश भाई, याद है अभव्य राशि का प्रमाण कितना है, किसको? हाँ जघन्य युक्तानंद, उससे अनंत गुणा, और सिद्धों के सिद्ध राशि के अनंत विभाग, ऐसा जो पर्टिकुलर अनंत है उसको दोनों तरफ से डिफाइन कर रहे हैं। अभव्य राशि से अनंत गुणा है और सिद्ध राशि से अनंत भाग है, तो अभव्य राशि से अनंत गुणा ऐसा जो सिद्ध राशि के अनंत वे भाग प्रमाण, भाग मात्र प्रमाण, उतने परमाणु मिलकर एक कारमाण वर्गणा होती एक कारमाण वर्गणा में इतने परमाणु है, कितने? अभव्य राशि से अनंत गुणा और सिद्ध के अनंत वे भाग, उतने ही वर्गणा मिलकर, यानी वर्गणाएं भी कितनी, अभव्यों से अनंत गुणी वर्गणाएं मिलकर एक समय प्रबद्ध होता है। एक समय प्रबुद्ध करता है, एक समय में बंधे हुए उसके प्रमाण कितना है, तो इतना अनंत है, कितनी अनंत कारमाण वर्गणा बनती है अभव्यों से अनंत गुणे वाली, और एक एक वर्गणा में इतने ही अनंत अनंत परमाणु है। प्रत्येक एक कर्मणा वर्गणा में इतने परमाणु है,
इतनी ही वर्गणा यानी वो भी सिद्ध राशि से अनंत ऐसा लेना चाहिए।
बिल्कुल, इसका अर्थ जो अभव्य राशि से अनंत गुणा वाला जो पर्टिकुलर अनंत है उसको उसी अनंत से गुणा करो तो जाके एक समय में बंधने वाले परमाणुओं की संख्या मिलेगी, जिसको हम समय प्रबद्ध कहते हैं।
मैंने पहले कारमाण की कारमाण वर्गना का
प्रमाण बताया,
और उसमें ही कारमाण वर्गना
एक समय में ग्रहण करता है जीव, तब एक समय प्रबद्ध होता है। प्रत्येक समय में प्रत्येक समय में इतने परमाणु कर्मरूप होकर एक जीव से बनते हैं, और ऐसा हर जीव के साथ चल रहा है, अनादि से चल रहा है। तो केवल कर्मरूप ही कितने पुद्गल ग्रहण करके छोड़े प्रत्येक जीव ने, वो ऐसा आता है ना कि अब तक जो जीव सिद्ध हुए ना उनको भी ले लो अपने साथ, और अनादि से प्रत्येक जीव ने प्रत्येक समय में उत्कृष्ट समय प्रबद्ध ग्रहण किया ऐसा मान लो, तो आज तक जितने परमाणु लेकर छोड़े हैं उससे भी अनंत गुणे परमाणु अभी अछूते हैं, किसी जीव ने ग्रहण नहीं किया। अग्रे उसको अनादि कहे, अनादि द्रव्य और साधि द्रव्य, हाँ पुद्गल राशि की महानता ख्याल में आती है। ये तो एक वर्गणा की बात चल रही है। तो कहते प्रत्येक समय में इतने परमाणु कर्म रूप होकर एक जीव से बनते हैं, इसलिए इसका नाम समय प्रबद्ध है। समय यानी एक समय में प्रबद्ध बंधने वाले विशेष रूप से, यह सामान्य प्रमाण है। क्या कहिए कितना बंधा, तो समय प्रबद्ध बंधा, उसमें भी जघन्य से उत्कृष्ट तक बहुत सारे भेद है। और वो क्यों हो गया भेद ऐसा, समय प्रबद्ध तो अनंत वाला तो होगा ही होगा, योग के कारण, जहां योग कम है वहां वो समय प्रबद्ध छोटा होगा, जहां असंख्यात गुणा वाला योग होता है, हमने देखा उत्कृष्ट से ये जघन्य से उत्कृष्ट असंख्यात गुणा होता है, तो ये समय प्रबद्ध भी असंख्यात गुणा हो जाएगा। पहले था ही अनंत में और उसको और असंख्यात गुणा कर दो। देखो यह सामान्य प्रमाण है, विशेष यानी विशेष जो प्रमाण है, योगों की हीनाधिकता के अनुसार समय प्रबद्ध में परमाणुओं की हीनाधिकता जानना, यानी योग ज्यादा तो समय प्रबद्ध में परमाणु ज्यादा। पुनश्च एक समय में ग्रहण किया हुआ समय प्रबद्ध यथा संभव मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति रूप परिणमता है, हमने देखा था ना ये जो ग्रहण किए हैं परमाणु वे ही विभाजित होते हैं अन्य अन्य प्रकृति रूप से, सब मिलकर एक समय प्रबद्ध का, अब वो सात या आठ मूल प्रकृतियों में विभाजित होता है, आयु कभी कभी बनती है तो हर हमेशा सात कर्म बन रहे और आयु जब बनेगी तब आठ कर्म बन देंगे। उन प्रकृतियों के परमाणुओं के विभाग का विधान गोमरसार कर्मकांड के बंधोदय सत्वाधिकार में प्रदेश बंध का व्याख्यान करते समय कहा है, यानी वो किसमें कितने परमाणु दिए जाते हैं, उसका विभाजन कैसे होता है, कौन सा भाग किसमें जाता है, सब सर्वाधिक भाग उसकी बात हमने देखी थी, कुछ याद है सर्वाधिक परमाणु किसमें चले जाते हैं, मान लेते सात कर्म वेदनी में जाते, हमने देखा था पूरा जो समय प्रबद्ध है, अभी आठ कर्मों की बात करेंगे, अवली के असंख्यात भाग से भाग देंगे, एक भाग जुदा रखेंगे और बहुभाग के आठ समान भाग करेंगे, जुदा रखे हुए भाग को फिर उसी से भाग देकर पहला बहुभाग वेदनी में देंगे, फिर एक भाग रखेंगे उसको फिर उसी भागार से भाग देकर दूसरा बहुभाग किसमें देंगे, मौनी में देंगे। फिर एक भाग कब होगा? ज्ञानानंद दर्शन अंतराय में समान रूप से देंगे। फिर एक भाग कब होगा? नाम गोत्र में समान में देंगे और एक भाग आयु में देंगे। ये तो हम देख चुके थे। तो देखा था, इतना तो याद है। जिस प्रकृति के हिस्से में जितने परमाणु आते हैं उतने परमाणुओं का समूह मात्र उस प्रकृति का समय प्रबद्ध जाना है। ये टोटल कर्म का समय प्रबद्ध कितना है तो जो ग्रहण किया था। अब इस मान लेते मुनि का समय प्रबद्ध कितना है तो जब सात कर्म बने तो सातवां भाग कहेंगे राउंड अबाउट। अभी उसमें जो हिना दिखता है वो अभी हमने देखी थी, पर सामान्य कथन क्या होगा वो सातवां भाग। जब आठ कर्म बनते हैं तो आठवां भाग जाएगा उसके खाते में। तो उसको क्या कहेंगे? उस प्रकृति का समय प्रबद्ध, यानी मोह का समय प्रबद्ध, ज्ञानावरण का समय प्रबद्ध, इस तरह कहेंगे उसको। पुनश्च जो परमाणु प्रकृति रूप बंधे वे परमाणु उस रूप यानी कर्म रूप इतने काल तक रहेंगे, ऐसा बंद होते समय स्थिति का प्रमाण होना वह स्थिति बंद है। जब परमाणु बंद है उसी समय में ये निश्चित हुआ है कि वो कितने काल तक जीव के साथ रहेंगे और अंत में कौन सा यानी उसको हम कहेंगे वो निषेक रचना जो होती है तो कहां तक की होती है तो उसको कहेंगे उतना स्थिति बंद हुआ, यानी इतने काल तक वो कर्म रूप रहेंगे। बाद में क्या होगा? अकर्म रूप हो जाएंगे, निकल जाएंगे उदय होकर। ये तो यहां तक ख्याल में है ना? ये तो सब अपने ये भाषा को या ये शब्द को हम इनसे तो परिचित हैं। वहां एक समय में जो स्थिति बंद हुआ उसमें से बंद समय से लेकर आबाधा काल तक तो वहां बंधे हुए परमाणुओं के उदय आने योग्य पने का अभाव है, इसलिए वहां निषेक रचना है नहीं। जिस समय बंद होता है उसी समय ये वहां निषेक रचना होती है। निषेक रचना का अर्थ यह है कि समान स्थिति वाले परमाणुओं के ग्रुप्स हम कहेंगे। तो बंद का यहां बंद हुआ इस समय में हमेशा नीचे से ऊपर तक रचना बताते हैं, क्योंकि काल बताना है तो ऊर्ध्वरूप बताते हैं। तो यहां बंद हुआ तो बंद के समय से लेकर कितने ही काल तक इन परमाणुओं में उदय आने की योग्यता नहीं है, उसको कहेंगे आबाधा काल। उसके ऊपर कुछ परमाणु आबाधा काल के पश्चात पहले समय में, कोई दूसरे समय में, कोई तीसरे में, जैसे अंतिम जितनी कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बांधी है वहां वो अंतिम निषेक है। तो यहां कहते हैं, फिर पढ़ती हुई पैराग्राफ में 12 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे पांचवी लाइन में, वहां एक समय में जो स्थिति बंद हुआ उसमें से बंद समय से लेकर आबाधा काल तक तो वहां बंधे हुए परमाणुओं के उदय आने योग्य पने का अभाव है। वहां बंधे हुए उस समय में बंधे हुए की बात है, जैसे अभी यहां मोहनी का बंद हो रहा है। हम मान लेते किसी ने 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध किया तो उसके 7000 वर्ष की आबाधा है और उसकी निषेक रचना उसके ऊपर के समय से लेकर हुई। 7000 वर्ष और एक समय दो समय करते 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 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक की निषेक रचना हुई। तो कहते हैं उसमें से क्या है, वहां बंधे हुए परमाणुओं के बंध आने योग्य पने का अभाव है, यानी वो बंध में नहीं आ रहे, उदय में नहीं आ रहे, सॉरी उदय आने योग्य पने का अभाव है। परंतु यहाँ क्या कोई किसी का उदय नहीं चल रहा है? सत्ता में जो पड़े हैं परमाणु उनका तो उदय चल रहा है, इस समय में बंधे हुए का उदय नहीं हो रहा, क्योंकि उसका उदय कब आएगा? अभी आबाधा के पश्चात। अब वो बाद में उदीर्णा से आता है उसके बाद बताएंगे स्वयं। तो वहां निषेक रचना है नहीं, निषेक रचना ही नहीं, परंतु बंद के समय ऊपर निषेक रचना हुई है। ऐसा नहीं कि 7000 वर्ष बीत जाएंगे बाद में निषेक रचना होगी, ऐसा नहीं है। ये पहले भी बताया था क्योंकि फोन पर किसी ने पूछा था अपने को ऐसा। तो निषेय रचना उसी समय होती है, परंतु आबाधा काल के जितने समय है उसमें कोई निषेय रचना नहीं। वहाँ कोई विद्वानों की चर्चा चली थी ना, उसके पश्चात प्रथम समय से लेकर बंदी हुई स्थिति के अंत समय तक, अभी हमने देखा 7000 वर्ष की आबादा है, उसके पश्चात प्रथम समय से लेकर बंदी हुई स्थिति के अंत समय तक, कौन सी स्थिति बांधी, 70 कोड़ा कोड़ी सागर की, उसके अंत समय तक एक एक समय में एक एक निषेय उदय आने योग्य होता है। आप कहेंगे प्रति समय कैसे होगा, बीच बीच में कुछ छूटेगा कि नहीं छूटेगा, नहीं, जितने अनंत परमाणु ग्रहण किए हैं 7000 वर्ष और एक समय दो समय तीन समय चलते चले जाओ, कहां तक, 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक एक एक समय में एक एक निषेक रचना हो जाती है। और कौन से निषेक में कितने परमाणु, वो तो विषय अलग है भी। इसलिए प्रथम निषेक की स्थिति एक समय अधिक आबाधा काल मात्र है। क्या कहा, ये इसको नाम हम पहला निषेक कहेंगे, परंतु पहला निषेक कहाँ बना है, आबाधा काल के ऊपर के समय में, उसकी स्थिति का अर्थ होता है वर्तमान समय से वो कितने ऊपर है, कब उदय आने योग्य है, 7000 वर्ष और एक समय में उदय आने योग्य है। तो इस निषेक के जितने परमाणु है उसमें कितनी स्थिति है, तो 7000 वर्ष और एक समय, एक ही समय में ये अनंत परमाणु बंधे है, एक समय में बंधे है और परिणाम एक ही है, तो सब परमाणु में समान स्थिति बननी चाहिए थी। तो कोई परमाणु में तो 7000 वर्ष और एक समय, अभी कोई बीच वाला होगा 1,00,000 वर्ष वाला, कोई ऊपर होगा 1,00,00,000 वर्ष वाला, और ये है ऊपर का है वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर इतने ऊपर पड़ा है, इतने अनंत वे उस परमाणुओं में अलग अलग वेरिएशन है, असंख्यात वेरिएशन होगी ना 7000 और एक समय से लेकर ऊपर 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक के जितने असंख्यात वर्ष है, अब उसको समयों में कन्वर्ट करो, तो इतने निषेक बने हैं और वहां के अलग अलग परमाणुओं की स्थिति अलग अलग पड़ी है। इससे क्या सिद्ध होता है, निमित्त से कार्य नहीं होता है। परमाणु की अपनी योग्यता से उनमें स्थिति पड़ी है वहां। देखो ये प्रथम निषेक की स्थिति एक समय अधिक आबाधा काल मात्र है, द्वितीय निषेक की स्थिति दो समय अधिक आबाधा काल मात्र है, इसी क्रम से द्विचरण निषेक की स्थिति एक समय कम स्थितिबंध प्रमाण है। द्विचरम यानी ऊपर से दूसरा, लास्ट से, अंत से दूसरा, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध किया है, तो जो ऊपर से दूसरा उपांत समय का जो निषेक है उसकी स्थिति कितनी पड़ी, एक समय कम 70 कोड़ा कोड़ी सागर, ये उसकी स्थिति कहलाई। जैसे मोह की 70 कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति बंधी, वहां 7000 वर्ष का आबाधा काल है, और प्रथम निषेक की स्थिति एक समय अधिक 7000 वर्ष है, द्वितीय आदि निषेकों की क्रम से एक एक समय अधिक होकर, द्वितीय आदि यानी दूसरा तीसरा सब क्रम से सबको ले लो, अंत निषेक की 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति जानना। ऐसे ही आयु बिना सात कर्मों का विधान है। आयु में अलग बात है, उसकी आबाधा और उसका वो कुछ अलग वर्णन है। आयु के स्थितिबंध में आबाधा काल नहीं गिनते। देखो अभी उसको देखेंगे हम, कोई जो जीव है मनुष्य है मान लेते हैं, और उसने कितनी आयु बांधी? मान लेते दो सागर की बांधी, स्वर्ग की आयु बांधी, और वो मनुष्य कितने साल वाला है? तो करोड़ पूर्व की आयु वाला है। अच्छा, नहीं चाहिए इतनी, छोटा चाहिए। अच्छा, 81 वर्ष की आयु वाला है। 81 वर्ष की आयु वाला है। और पहला ये जो अपकर्ष काल, जब 27 साल बाकी थे, 54 साल बीत गए थे, 54 साल की उम्र में एक अंतर्मुख के लिए आने का बंद किया, उसकी आबादा कितनी? जितनी बाकी है 27 वर्ष, अभी एक अंतर्मुख कम करो, उसको नहीं गिनेंगे हम, तो 27 साल उसकी आबादा है। किसी अन्य ने, ये 27 में नहीं, जब 9 साल बाकी थे तभी आयु बांधी, तो उसकी आबादा कितनी है? 9 साल बाकी है, 9 साल। अब किसी ने अंतिम अंतर्मुहूर्त में आयु बांधी, अंतर्मुहूर्त, तो ये किसी ने, तो ये जो 27 साल पहले किसी ने दो सागर की आयु बांधी और किसी ने लब्धि अपर्याप्त की आयु बांधी, हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये छोटी आयु बांधी, अभी उसके झंझट में नहीं पड़ेगी। यानी किसी ने वो तो भूभूमि की आयु बांधी, तो दो, एक दो या तीन पल्ले की बांधी, किसी ने दो सागर की बांधी, तो क्या आयु जितनी बांधी उस प्रपोर्शन में आबादा है? 7 कर्मों में कैसा था? 70 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए 1700 यानी 7000, 30 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए 3000, वो प्रोपोर्शनेट था। वैसा आयु के बंध में ऐसा प्रोपोर्शन नहीं है, ये बात बताना चाहते हैं।
54 साल की उम्र में अगर बांधेगा 27, तो वो वापिस बांधेगा कि ऐसा कोई जरूरी?
बांध सकता है, नहीं भी बांध सकता, ऐसे 8 बार बांधने के अवसर आते हैं। कोई जो ऐसे 8 ही बार बांधेगा, कोई 7 बार, कोई 6 बार, कोई एक ही बार बांधेगा, जरूरी नहीं कि फिर दोबारा बांधे। अभी उसमें बहुत सारी विषय थे, अपना सुबह विषय चल रहा है उसका।
8 बार बांधने वाले सबसे कम जीव, 7 बार बांधने वाले उससे थोड़ा
ज्यादा है,
6 बार बांधने वाले उससे अधिक, 1 बार बांधने वाले
सबसे ज्यादा है,
सबसे
ज्यादा, यानी मेजोरिटी एक बार बांधेंगे इस तरह। कोई
लास्ट अंतर मुहूर्त में
बांधते नहीं, एक बार यानी पहली बार, वो पहली कभी भी एक बार बांध सकते हैं, पहले अपकर्ष में बांध सकते हैं, ऐसा नहीं कि बाद में बांधेंगे।
एक ही बार आयु बांध दिया
था, हाँ, श्रेणी के राजा,
श्रेणी के राजा,
क्यों इसका भी उत्तर चाहिए? क्या नरक का बंद किया? नरक बांधी,
पहले
समय दृष्टि होने पर तो नरक बांधी, समय दृष्टि नरक बांध नहीं सकता, नहीं आयु एक ही बनती है, देव गति बांधेगा, आयु नहीं बांधेगा, जो आयु बनती है वो फिक्स है, उसमें संक्रमण नहीं होता,
इसलिए हमें हमेशा करना है कि नियम ख्याल में रहेंगे तो अपने को तकलीफ नहीं करेगा, हम डिराइव कर सकते हैं ना, समय देते हो गया तो नरक आयु बांधे ही नहीं, इसलिए उसने एक ही बार बांधे,
अब ये आयु की बात हम कल देखेंगे। देखो आयु के स्थिति बंध में आबादा काल नहीं गिनते ना, वहाँ से हम देखेंगे, कल देखेंगे
वहाँ एक समय में ना,
हाँ आयु के स्थिति बंध में आबादा काल नहीं गिनते, हाँ 4-5 लाइन की बात, एक समय में तो बहुत नीचे है। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नो सदा